सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तीर्णये जिनेनमिं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश मूल में हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जो 12वीं पुस्तक चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के बाद अब हम चुली का देख रहे हैं। अनुभाग स्थानों की बात चल रही है अपने, जैसे हम जीव कितनी स्थिति बांधता है तो जो उत्कृष्ट स्थिति बनती है एक समय में उसकी बात करते हैं, वैसे अनुभाग स्थान किसको कहते हैं। तो एक समय में जो कोई बंध होता है उसमें मैक्सिमम अनुभाग जिस परमाणु में होता है उतने अनुभाग को एक स्थान कहा है, और उस पहले स्थान से दूसरे स्थान में कितना अनुभाग बढ़ता है तो हाँ अनंत गुणा है, तो उसमें वो स्पर्धक कहते हैं। तो इस तरह से हम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। जघन्य स्थान से हमने शुरू किया था। जघन्य स्थान होता है सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में बंधने वाले, ज्ञान आवरण की बात चल रही है। फिर वहाँ से हम नीचे नीचे एक एक समय उतर कर आए तो दूसरा स्थान है अनंत गुणा, तीसरा स्थान अनंत गुणा, इस तरह से अपूर्वकरण तक तो आ ही गए। फिर बाद में सर्वविशुद्ध मिथ्या दृष्टि की बात उठाई उन्होंने अंतिम समय में, फिर उसमें भी नीचे नीचे आ गए। उसके बाद कल असंगी की भी बात आई थी, असंगी पंचेंद्रियों में। अब यहां 123 पृष्ठ पर आ गए हम। अब कहते पुनः इसके आगे असंगी पंचेंद्रियों के बाद अभी चतुरिंद्रियों की बात हो रही है। इसके आगे सर्व विशुद्ध चतुरिंद्रिय के अंतिम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। चतुरिंद्रिय संबंधी जो विशुद्धि के स्थान है उसमें से उत्कृष्ट विशुद्धि लेना, उत्कृष्ट विशुद्धि वाला जघन्य अनुभाग बांधेगा। ज्ञानावरण अप्रशस्त कर्म है इसलिए विशुद्धि का साथ उसका इन्वर्स प्रपोर्शन होगा, तो मैक्सिमम विशुद्धि है वहां अनुभाग जघन्य होगा। फिर उसी के असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी चतुरिंद्रियों में भी जो अलग अलग अनुभाग बंद स्थान है वो असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। चतुरिंद्रिय में उत्कृष्ट विशुद्धि से चालू किया था वहां जघन्य अनुभाग बंद है, और उसी चतुरिंद्रिय जीव के जो अधिक से अधिक उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा, अनुभाग बंद वो अनंत गुणा होगा। फिर उसके ही अंतिम समय में होने वाला जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी, पहले उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी दोनों लिए, चतुरिंद्रिय की विशुद्धि जो उत्कृष्ट है उसमें भी उत्कृष्ट से जघन्य तक बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण उसके स्थान है, तो उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ पहले जघन्य लिया, फिर उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जघन्य उत्कृष्ट अनुभाग लिया, अब जघन्य विशुद्धि के साथ जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग कहेंगे। कल जैसे हमने चार दो ट्रायंगल वैसा ही उल्टा समझना। फिर उसके ही अंतिम समय में होने वाला जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षठस्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। इसी प्रकार द्विचरमादि समयों में अनंत गुणित क्रम से अंतर मुहूर्त तक उतारना चाहिए। क्या कहते हैं, पहले अंतिम समय की बात की थी, सर्व विशुद्धि की अंतिम समय, विशुद्धि भी बढ़ती जाती है ऐसा जीव लिया है, तो जहां विशुद्धि ज्यादा है देखो क्या कहना चाहते हैं, चतुरिंद्रियों की बात चल रही है और यहां आओ बैसो। यहाँ धवला पुस्तक 12वीं की बात चल रही है, कुछ बातें आपकी समझ में आएगी नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा हम उसको क्या बात चल रही है उसकी बात देखेंगे। जीव हर समय कर्म का बंध करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो राग द्वेष मोह करता है, तो जो कर्म का बंध होता है उसमें चार प्रकार होते हैं, कौन सी प्रकृति बांधी है उसको हम प्रकृति बंध कहते हैं, कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधे उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं, और जितने काल तक वो कर्म जीव के साथ रहेगा उसको हम कहते हैं स्थिति बंध। वहां लिया था ना अटलांटा में, याद है थोड़ा? हाँ। और उसके बाद कितना अनुभाग बनता है, फलदान शक्ति कितनी है, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। अब इस पुस्तक में हमारे अनुभाग बंध की चर्चा चल रही है, ये अनुभाग कब ज्यादा बनता है और कब कम बनता है। तो प्रकृतियां दो प्रकार की होती है, प्रशस्त यानी शुभ प्रकृतियां और अप्रशस्त यानी अशुभ प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां। तो जहां जीवों के परिणाम विशुद्ध यानी शुभ होते हैं वहां पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा बंधेगा, और पाप प्रकृतियों पुण्य के परिणाम के फलस्वरूप पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम बंधेगा। पुण्य परिणामों को यहां विशुद्ध परिणाम कहते हैं। तो विशुद्धि परिणाम के साथ देखो, एक कोई परिणाम होता है, जीव एक समय में कोई परिणाम करता है, उसके साथ अलग अलग स्थितियों का बंध होता है और अलग अलग अनुभाग भी बनते हैं। तो केवल ज्ञानियों ने तो ये सारे जाने हैं, जीवों के परिणाम अलग अलग जो है, तो उसको कहते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण, अलग अलग परिणामों के द्वारा ये बातें चलती है। तो कौन से जीवों को कितना उत्कृष्ट है, जघन्य है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है, और उसमें हम पंचेंद्रियों से लेकर अभी एकेंद्रियों की तरफ देख रहे हैं। हमने यहाँ ज्ञानावरण की बात चल रही है, ज्ञानावरण कर्म का जो अधिक उत्कृष्ट बंद करने वाला अनुभाग बंद अधिक है ने ज्ञानावरण तीव्र बांध रहा है, तो उसके फलस्वरूप ज्ञान की हीनता होगी। जैसे अभी जो एकेंद्रियों में जीव पड़े हैं उनमें ज्ञान बिल्कुल कम है, हम पंचेंद्रिय हमें ज्ञान ज्यादा है, क्यों, अभी हमारा जो उदय चल रहा है पूर्व में बंधे हुए वो मंद अनुभाग का उदय चल रहा है, और उन जीवों को तीव्र अनुभाग का उदय चल रहा है। अभी हम उदय की बात नहीं ले रहे, नया जो बंद हो रहा है उसकी बात चल रही है। तो ज्ञानावरण का कम से कम मिनिमम पॉसिबल बंद कौन करता है, तो दसवें गुणस्थान वाले जो जीव है अंतिम समय में, तो उनकी विशुद्धि इतनी, अभी एक समय के बाद पूर्ण वितराग होने वाले है, वो समय जो है अंतिम, वहां भी बंध चल रहा है ज्ञानावरण का, परंतु वो बंध कैसा होगा, बिल्कुल नहीं जैसा मंद अनुभाग वाला। एक समय पूर्व उससे तीव्र अनुभाग होगा, उससे एक समय नीचे आओ तो उससे तीव्र अनुभाग है। इस तरह से हमने दसवें गुणस्थान से नीचे 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 उतरते हुए संयत तक आए थे। उसके पश्चात मिथ्या दृष्टियों की बात, तो मिथ्या दृष्टियों में भी मिनिमम पॉसिबल अनुभाग कौन बांध देगा, तो जो मिथ्या दृष्टि आगे अगले समय ने नेक्स्ट समय में जो सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो जो करण लब्धि के परिणाम होते हैं जिसको कहते हैं, तो उस अंतिम समय वाला मिथ्या दृष्टि है तो वो कम अनुभाग बांधेगा। अब उसमें भी नीचे नीचे समयों में आए हम, नीचे के समयों में, यानी सम्यक तो प्राप्त करने के अभी उसको टाइम है, तो अंतर्मूर्त नीचे उतर कर आए तो उसको अनुभव ज्यादा होगा। इसी तरह हमने अन्य पंचेंद्रियों की भी बात देखी थी और असंगी पंचेंद्रियों की भी बात देखी थी। अब चतुरिंद्रिय का विषय चल रहा है यहाँ पर 123 पृष्ठ पर। अब चतुरिंद्रियों के जीवों में भी चतुरिंद्रिय ने जो भ्रमर आदि जीव होते हैं उसकी बात चल रही है। जिनको चार इंद्रियां पाई जाती है उसको चतुरिंद्रिय कहते हैं। तो ये चतुरिंद्रिय जीवों में भी उनके भी परिणाम कभी संकलेश होते हैं, विशुद्ध होते हैं, उन्हें उनमें भी शुभ अशुभ भाव चलते हो। चतुरिंद्रिय की बात क्या, एकेंद्रियों में भी जिसको हम निगोद पर्याय कहते हैं या अन्य पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, उन जीवों में विशुद्धि और संकलेश परिणाम होते हैं। तभी तो कोई एकेंद्रियों में से निकलकर मनुष्य भी हो सकता है, तो उसने कुछ वहां पुण्य किया तो ही आए ना। हमें क्या लगता है, हम ही पुण्य कर सकते हैं, है ना? ऐसा लगता है वो एकेंद्रिय जीव क्या पुण्य करते होंगे, क्योंकि हमने पुण्य किसको समझा है, किसी क्रिया को, मंदिर में जाना, दान देना, दूसरे को मदद करना। तो वो एकेंद्रिय जीव तो हलता नहीं है, एक अपनी जगह से जगह छोड़ता नहीं, अभी वृक्ष वही के वही है, वो क्या शुभ भाव करता होगा। तो ये शुभ भाव, ये तो भावों की विशुद्धि या संकलेश है, किसी क्रिया से उसका संबंध नहीं है। तो यहाँ जो चतुरिंद्रिय जीवों के अभी हम रेंज लिखेंगे, ये जघन्य विशुद्धि और ये उत्कृष्ट विशुद्धि, ये विशुद्धि के परिणाम हम यहाँ बता रहे हैं। ये तो जीवों के परिणाम की बात है। अब उस समय बनने वाला अनुभाग जो है ज्ञान आवरण कर्म का अनुभाग, उसका यहाँ प्रपोर्शन बता रहे हैं। देखो हमने पढ़ा था ये जो पैराग्राफ है नया, इसमें सर्व विशुद्ध चतुरिंद्रिय के अंतिम समय में, ये विशुद्धि की भी अंतिम समय लिया है, उसके अंतिम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान। अभी ये विशुद्धि स्थानों में ये अंतिम समय वाला उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान और अंतिम समय वाला ये जघन्य विशुद्धि स्थान, ये दो लिए ना हमने। तो उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थान के संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है, ये पहले के कंपेयर में ये अनंत गुणा है, वो बात बताए। तो ये जो उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ अनुभाग बंद जो होगा उसके भी जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत सारे स्थान होंगे, अलग 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 अनुभाग बंधने वाले उसके परिणाम होंगे। तो उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जघन्य अनुभाग बंद हो सकता है और थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा उत्कृष्ट भी हो सकता है। तो ये जघन्य से उत्कृष्ट जो है वो अनंत गुणा है, अनुभाग की बात चल रही है। फिर कहते उसी के असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। ये जघन्य से उत्कृष्ट अनुभाग के स्थान अलग अलग वेरिएशंस कितने हैं, तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण है। जब हम लोक प्रमाण कहते हैं तो एक लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और जब असंख्यात लोक कहते तो उसको फिर असंख्यात से मल्टीप्लाई करना, तो इतने तो इसमें स्थान है। और बीच में एक शब्द आया षट स्थान, अभी वो षट स्थान को आप गौण कर दीजिए क्योंकि वो षट स्थान वृद्धि का प्रकरण यहाँ हो चुका है, आप तो वो बहुत लंबा चौड़ा है। बहुत सारे स्थान होते हैं, असंख्यात इसमें स्थान होते हैं। अंतिम समय लिया सर्व विशुद्धि, भव का अंतिम समय नहीं, सर्व विशुद्धि का, सर्व विशुद्ध परिणामों का अंतिम समय। अभी सर्व विशुद्ध परिणाम अंतर्मूर्त रहेंगे तो उसके यानी क्रम से वृद्धि रूप होने वाले परिणाम ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि भव के अंतिम समय में उसको विशुद्धि हो। हाँ, अभी यथा योग्य जब उसकी विशुद्धि होगी वैसा लेना, फिर उससे कम विशुद्धि वाला ऐसा अलग लेना। भव के अंतिम समय में एक अंतर्मूर्त ऐसा नहीं, कंटिन्यूस यदि बढ़ते हुए है तो ऐसा एक ही परिणाम अंतर्मूर्त नहीं रहता। हाँ, क्योंकि हमने वो परिणामों के भी देखे थे ना, उसकी यौ मध्य रचना वगैरह, उसमें हमने देखे थे वो दो समय या हाँ आठ समय इस तरह से रह सकते हैं। देखो फिर उसके ही अंतिम समय में होने वाला जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा। ये हमने उत्कृष्ट विशुद्धि देखी थी और उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जघन्य बंद और उत्कृष्ट बंद देखा। अब यहाँ कहते हैं ये जघन्य विशुद्धि है, समय वही है। ऐसा भी ले सकते कि विशिष्ट स्थिति बंध के कारणभूत ये विशुद्ध परिणाम, और फिर उसमें अनुभव जैसे हमने कल लगाया था। अब इसके भी जघन्य विशुद्धि के साथ भी जघन्य अनुभाग बंद और उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। तो हम क्या देख रहे थे, इससे ये अनंत गुण है, इस उत्कृष्ट से इसका जघन्य अनंत गुण है और इस जघन्य से इसका उत्कृष्ट अनंत गुण है। यहाँ विशुद्धि हमने ऊपर की ओर देखी थी और यहाँ अनुभाग जो है अनंत गुणा वो नीचे की ओर देखना। जितनी विशुद्धि ज्यादा उतना अनुभाग कम बंधेगा, जितनी विशुद्धि कम है उतना अनुभाग ज्यादा बंधेगा। देखो अभी पांचवी लाइन, फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये तो एक समय वाली बात की, फिर द्विचरम वाली बात। इसी प्रकार द्विचरमाधिक समयों में अनंत गुणित क्रम से अंतर्मुहूर्त तक उतारना चाहिए। ये उन अंतर्मुहूर्त लिया उन्होंने अलग अलग जो कुछ है। फिर चतुरिंद्रिय के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी, ये चतुरिंद्रियों में भी जो सर्व विशुद्धि स्थान है ऐसे अंतर्मुहूर्त वाले जो कुछ अलग 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 परिणाम, एक ही परिणाम नहीं लेना, अलग अलग जो, क्योंकि विशुद्धि भी कम होती है ना उसमें। तो कहते हैं चतुरिंद्रिय के एक सर्व विशुद्ध स्थान अलग बताए और स्वस्थान ने अन्य परिणाम वाले वो अलग बताए। उसमें से जो उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। अब उसमें भी यही अप्लाई करना। पहले हमने ये सर्व विशुद्ध संबंधी विशुद्धि देखी थी, अब स्वस्थान ने अन्य जीवों की बात है, अन्य चतुरिंद्रियों की जो सर्व विशुद्ध नहीं है ऐसे सामान्य अन्न लेना, उसमें भी उत्कृष्ट से जघन्य परिणाम हो गए, फिर उत्कृष्ट का जघन्य, फिर उसका उत्कृष्ट, इस तरह से उसमें भी अप्लाई करना। ये सामान्य, पहले हमने सर्व विशुद्धि वाला लिया, अब सामान्य स्वस्थान जिसको कहा है। हाँ ऐसे तो है, क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी जो संगी पंचेंद्रिय में हो रहा था उससे हम असंगी में अनंत गुणा देखा है, अनुभाग का बंद स्थिति कम बनती है वहाँ, एकेंद्रियों आदि में उनकी स्थिति, हमने एकेंद्रियों में एक सागर वाली होगी मिथ्यात्व की, और ज्ञानावरण की स्थिति उसमें भी कम, तीन सप्तमांश सागर इतनी मैक्सिमम स्थिति बनती है, परंतु अनुभाग की अपेक्षा हम अनंत गुणा की ओर बढ़ रहे हैं। तीव्र अनुभाग है ना वहां पर, स्थिति भले कम बन रही है उनकी, अब देखेंगे उसकी बात आएगी। देखो अभी तो हमने असंगी से फिर चतुरिंद्रिय में आ गए हैं, पूर्व पूर्व से अनंत गुणा देख रहे हैं ना यहाँ पर। ज्यादा होता है हाँ, अभी उसी को अप्लाई कर रहे हैं ना, अभी विशुद्धि की बात चल रही है और सामान्य की बात चल रही है, हम उसकी ओर जाएंगे, क्रम से सभी स्थान देखेंगे तभी पता चलेगा। देखो ये स्वस्थान की बात पढ़ी हमने, नीचे से पांचवी लाइन, फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का अन्य जीव जो विशुद्धि नहीं है वो चतुरिंद्रिय की बात चल रही है यहाँ पर। हम केवली में भी केवली जो केवली भगवान है उसको भी स्वस्थान केवली ऐसा अलग लेते हैं और समुद्घात केवली अलग लेते हैं। तो समुद्घात करने वाले स्वस्थानों में उत्कृष्ट विशुद्धि, पहले सर्व विशुद्धि वालों में भी उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट बात, वहां अंतर्मूर्त लिया था अलग, और स्वस्थान ने जो सर्व विशुद्ध वाला वो अंतर्मुख जिसको नहीं है अन्य जीव, अन्य चतुरिंद्रिय जीव लिया। तो केवलियों में भी हम स्वस्थान कहते हैं, सातवें गुणस्थान में भी हमने स्वस्थान और सातिशय अप्रमत्त ऐसे देखे थे, तो जो वहां विशुद्धि ज्यादा है वो बताने के लिए उसको सातिशय अप्रमत्त कहा था सातवें वाले को, और अन्य सामान्य जो है सातवां छठा सातवां चलता है उसको स्वस्थान कहा था। यह चतुर इंद्रियों में भी जिनकी विशुद्धि अधिक होगी ऐसे कोई जीव है तो उसको वहां सर्व विशुद्धि कहा, और अन्य जो जीव है उसको स्वस्थान चतुर इंद्रिय कहा। उनमें जो रेंज है उत्कृष्ट से जघन्य उसकी बात चल रही है। देखो उनमें हमने जघन्य अनुभाग स्थान देखा था, वो पहले वाले से अनंत गुणा देखा, जो विशुद्ध नहीं है ऐसा जीव है। फिर उसके ही असंख्यात लोक मात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। फिर उसी चतुर इंद्रिय के स्वस्थान अभी जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी, पहले हमने उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी अनुभाग स्थान देखे, वो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है। अब जघन्य विशुद्धि के साथ अनुभाग बंद होता है, वो भी जघन्य पहले लेंगे फिर उत्कृष्ट लेंगे। नीचे की ओर हम अनंत गुणा देख रहे हैं ना, देखो फिर उसी चतुर इंद्र के नीचे से तीसरी लाइन, स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही जघन्य विशुद्धि स्थान के असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। मेरी ये पुस्तक है ना, यहाँ तो ये सारी गणित की बात और अनुभाग बंद की और ऐसे कुछ चलती है। शाम को अपना विषय सरल है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है, तो आप जा रही है तो पैर को ही
है। थोड़ा तो ज्ञान मिलेगा।
हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। अरे केवल ज्ञान लेने की शक्ति है ना यहाँ पर। हाँ तो कभी पहले सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। देखो आगे पढ़ेंगे अभी हम, पुनः इसके आगे सर्व विशुद्ध चरम समयवर्ती तीन्द्रिय, विशुद्धि की वो चरम समय लेना उसका, अभी तीन्द्रियों की बात उठा रहे हैं। उसके उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी, ब के ऊपर बिंदी लगाना, संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। अभी यही अप्लाई करना, ये फिगर जो है ना इसे ख्याल में लेना। अभी विशुद्धियों में उत्कृष्ट विशुद्धि ली, उससे जो पहले हमने चतुर इंद्रिय की बात की थी, चतुर इंद्रियों में जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अनुभाग बनता था उससे तीन इंद्रियों में बनने वाला जघन्य अनुभाग भी अनंत गुणा है। आपका जो प्रश्न था ना, हम नीचे की ओर चल रहा है, वहां इतना अनुभाग बंद कर रहे ज्ञानावरण आदि का। वो नहीं, पंचेंद्रिय जीव जो बांध रहा है उसकी बात है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न ऐसे, एकेंद्रिय जाति जो जीव बांध रहा है, पंचेंद्रिय जीव सभी बांध सकते हैं ना, पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रिय का भी बंद कर सकता है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, वो दोबारा पंचेंद्रिय भी हो सकता है। तो जो जो एकेंद्रिय जाति बांध रहा है ऐसा आपका प्रश्न है, उसके नहीं ऐसी ऐसी सोचो मत। एक अल्प, अच्छा अरविंद भाई कहते अल्पभूत में आएगा, क्योंकि उसमें तो वेरिएशन होगा ही, क्योंकि वो जो उसने बंद किया है, देखिए आप वो दो दो जो है वो अलग अलग बातें। एकेंद्रीय जाति बांध रहा है तो नाम कर्म के साथ यथा योग्य उसका पंचेंद्रिय के योग्य अनुभाग बंद करेगा वो। अभी उसके उदय रूप जब होती है तो एकेंद्रीय की जाति उदय रूप होती है तो वैसे वैसे ज्ञानावरण का उदय होगा। देखो बंद होकर अनुभाग अंदर पड़ा रहता है, सत्ता में पड़ा रहेगा, अब उदय रूप होगा तो एकेंद्रियों के योग्य ज्ञानावरण का ही उसका क्षोभम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पंच कर्म बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं और कभी किसका कैसा उदय आता है सब में समझना, साता वेदनी असाता वेदनी। और हम क्या, हम तो दुखी होते हैं ना वर्तमान संयोग देखकर बेन, तो इसमें क्या समझना, अरे अपने कोई खोटे परिणाम थे तो उससे दुखी होने से अगर हम संकलेश परिणाम करते तो और तीव्र बंध होता है। देखो विशुद्धि में भी इतना बंध होता है, जगन्य विशुद्धि में भी होता है, अभी तो संकलेश के परिणाम उठाए नहीं है, तो तीव्र संकलेश वालों का कितना परिणाम होगा। तो हम भी अपना परिणामों की जो बात करते हैं, तो संयोगों को देख देख कर अभी हम जितना संक्लेश करेंगे, जितना ये जितना संक्लेश परिणाम करते हैं, तो ऐसे ज्ञान आवरण आदि का तीव्र बंद होता है। तो उसके अभी हमारे तो वर्तमान की हम इतनी आयु पूर्ता देखते हैं, परंतु जो अंदर बांध कर पड़ेंगे उसका उदय फिर आना ही रहा, फिर उसके चक्कर में और ऐसे पीसते रहते हैं। ये बात अनादि से चल रही है, ख्याल है ना? तो ये तो यहाँ सारा ये कर्म को जानकर क्या करना है, तो हमें तो पता चलता है ना कि हम अनादि काल से इतना परिभ्रमण करते आए हैं, आज मनुष्य हुए, तो आज तो हम शास्त्र ज्ञान करके अपना स्वरूप पहचान सकते हैं। तो मूल में मूल करने जैसी बात ये है कि अपना स्वरूप पहचानना है। तो हम पूरी जिंदगी किस में बिताते हैं, तो पैसा कमाना, उसका उपभोग लेना, और या कोई प्रतिकूलता है तो उसको दूर करना, परंतु अपना मूल स्वरूप पहचानेंगे तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। ये बात यहाँ हमको लेना है समझ में। देखो अभी हम तीन इंद्रियों की बात करेंगे, इसके आगे सर्व विशुद्ध चरम समयवर्ती तीन इंद्रिय के उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। यही फिगर सामने रखना, इसके उत्कृष्ट की बात की अभी हमने, उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ उत्कृष्ट ज्ञानावरण का बंद। फिर उसके ही अंतिम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना, ये जघन्य विशुद्धि का जघन्य अनुभाग स्थान वो अनंत गुना है। इसके ही असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। इसी प्रकार से द्विचरमाधिक समयों में अनंत गुणित क्रम से अंतर्मुहूर्त तक उतारना चाहिए। ये अंतर्मुहूर्त तक, यही बात नीचे नीचे के समयों में वो अनंत गुणा अनंत गुणा होगी, क्योंकि विशुद्धि कम है ना वहां पर। फिर तीन इंद्रिय के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्ध स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। ये स्वस्थान वाले पहले सर्व विशुद्ध वाले लिए थे। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्ध स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। और फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। तो इस तरह से हमने नीचे की ओर अनंत गुणा तीन इंद्रियों में देखा। अब आगे पुनः इसके आगे सर्व विशुद्ध द्विंद्रिय, देखो सर्व विशुद्ध ने वहां भी ऐसे परिणाम होते हैं, तो कुछ ज्ञानावरण भी हीन बांध रहे और अन्य अन्य पंचेंद्रिय जाति भी बांध सकेंगे, तो कोई द्विंद्रिय देवगति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? हाँ मंजूताई, द्विंद्रिय जीव सर्व विशुद्धि वाला देवगति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? मालूम नहीं क्या थी? नहीं बांधेगा। देवगति को बांधने वाले पंचेंद्रिय हो सकते हैं, असंगी बांध सकता है, परंतु वो बहुनत्री की बांधेगा। हाँ देवगति से द्विंद्रिय होगा कि नहीं? कोई नहीं होगा, एकेंद्रीय हो सकता है। देव भी वो बहुत संक्लेश परिणाम करते ना, क्योंकि पता चलता है 6 महीने अभी आयु बाकी है, तो बहुत शोक करते हैं कि अरे अभी इतना सारा वैभव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अमेरिका छोड़कर इंडिया आना है ऐसा कहते हैं। तो इतना शोक करेंगे तो एकेंद्रीय में भी जा सकते हैं, नारकी नहीं जाएंगे एकेंद्रीय में, नारकी तो पंचेंद्रियों में ही जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग करना नियोग के बहुत सारे नियम है। अभी हम बढ़ते आगे देखो, पुनः इसके आगे सर्व विशुद्ध द्विंद्रिय के अंतिम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। ये उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। यहाँ तक आ गया। फिर उसके ही अंतिम समय में जघन्य विशुद्ध स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षठ स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। ये तो सर्व विशुद्धों में अप्लाई किया अंतिम समय में। इस प्रकार द्विचरमादिक समयों में, द्विचरम यानी लास्ट बट वन, अंत से दूसरा, उसको द्विचरम कहते हैं। अंतिम लास्ट है उसको चरम कहते हैं, और द्विचरम एन लास्ट से दूसरा, सेकंड लास्ट। द्विचरमादिक समयों में अनंत गुणित श्रेणी रूप से, श्रेणी यानी पंक्ति, अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा, उसको कहते हैं श्रेणी रूप। अंतर्मूर्त तक उतारना चाहिए, अंतर्मूर्त यानी उसमें असंख्यात समय जो आवली से भी बड़ा होगा, तो इतने यथा योग्य अंतर्मूर्त समझना। अंतर्मूर्त का अर्थ 48 समय ऐसा हर जगह, 48 मिनट ऐसा हर जगह नहीं होता है, वो तो सबसे बड़ा अंतर्मूर्त कहलाता है 48 मिनट में एक समय कम। परंतु छोटे छोटे अंतर्मूर्त अपने ख्याल में भी नहीं आवे, इतने छोटे होते हैं। आवली वाला वो मिनिमम अंतर्मूर्त होता है। इस प्रकार द्विचरमादिक पढ़ा ना हमने, समयों में अनंत गुणित श्रेणी रूप से अंतर्मूर्त तक उतारना चाहिए। नीचे उतरेंगे तो अनुभाग अनंत गुणा अनंत गुणा, क्योंकि विशुद्धि कम है वहां पर। इसके पश्चात द्विंद्रिय के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी, यानी अन्य जीव लिए द्विंद्रियों में, उसमें से उत्कृष्ट विशुद्धि वाला लिया, और उसमें फिर जघन्य उत्कृष्ट कहेंगे। जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। अभी हम पेज 125 पर आ गए, 125। फिर उसके ही जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। अब द्विंद्रिय हो गए, अभी एकेंद्रियों में आ गए। तो एकेंद्रियों में भी पहले बादरों को लेंगे, बाद में सूक्ष्म। एकेंद्रिय दो प्रकार के होते हैं ना, बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय। तो कहते इसके आगे सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय के अंतिम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। अभी यही रिपीट करेंगे, उत्कृष्ट विशुद्ध स्थान का जघन्य, फिर उत्कृष्ट का ही उत्कृष्ट, वो अनंत गुणा की ओर से बताएंगे सब। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षठ स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। देखो ये भावों की कितनी अलग अलग वेरिएशन है, असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग भाव एक इंद्रियों में भी हो सकते हैं, और उनके बंद हो रहे वो भी इतने वेरिएशन वाले हो सकते हैं। फिर उसके ही अंतिम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। उसके ही असंख्यात लोकमात्र छह स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। इस प्रकार द्विचरमादिक समयों में, पहले हमने चरम समय की बात की थी, अभी द्विचरम फिर त्रिचरम, इस तरह से अनंत गुणित क्रम से अंतर्मूर्त तक उतारना चाहिए। उसके आगे बादर एकेंद्रिय के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षठ स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसी बादर एकेंद्रिय के स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षठ स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। पुनः इसके आगे वहां बादर एकेंद्रिय कॉमन लिया था, सर्व विशुद्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक। हाँ, पर्याप्त अपर्याप्त में यहाँ भी अपर्याप्त लिया। अब इस पर भी ऐसे विशुद्धि के स्थान घटाएंगे। सूक्ष्म निगोद में से भी मनुष्य भव ले सकता है, मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? सूक्ष्म में से निकलकर मुनि हो सकता है, मोक्ष नहीं जाएगा। बादर निगोद में से मनुष्य भव इमीडिएट आकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है। तो उस बादर निगोद ने कैसा कैसा सारा बांध, मनुष्य गति बांधी, वज्रषभ नारायण सहनन बांधा है ना, उसके बिना तो मोक्ष नहीं जाएगा। तो वहां भी ऐसे परिणाम जीवन के हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसी समय बांधा होगा ना, मनुष्य गति तो वही बंधेगा। हाँ, नित्य निगोद में से भी आ सकता है। बंद बन सकता है। हाँ, हाँ देखो, ये हम नीचे नीचे से तीसरे उसी के असंख्यात लोक मात्र षट्स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही अंतिम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसी के आगे 126 पृष्ठ असंख्यात लोक मात्र षट्स्थानों संबंधी उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। ये तो अंतिम समय में उन्होंने बताया। इस प्रकार द्विचरमाधिक समयों में अनंत गुणित क्रम से अंतर्मुहूर्त तक उतारना चाहिए। तत्पश्चात हत समुत्पत्ति करके स्थित सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। अभी हत समुत्पत्ति की बात अपनी आई नहीं, एक बार आई थी। हत समुत्पत्ति के सत्ता में से वो जो कुछ घात कर दिया है उन्होंने, वो हत समुत्पत्ति उसकी बात अभी आएगी। दो बार हत वाला भी लिया था उसने। हाँ, हत वाला उसका भी चैप्टर नहीं आया अपना। ये चौथी लाइन, फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का बंध व सत्व के सदृश अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। यानी सत्व का भी वो सदृश है और बंध का भी सदृश है, वो भी अनंत गुना है। यहाँ तक आ गए हम। ये सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव जो है उसमें भी कितने वेरिएशन है बंध में। उसमें भी विशुद्धि वाला होगा और फिर वो जगन विशुद्धि वाला भी होगा। असंख्यात लोक प्रमाण तो षट्स्थान बुद्धि है उसके, और वो अनंत गुणित अनंत गुणित अनंत गुणित है। तो ऐसे भी जीव है ना, बार बार निगोद में से निगोद में, निगोद में से निगोद में, ऐसे जन्म मरण जन्म मरण। कितने जो अनादि से निगोद में अभी तक बाहर ही नहीं आए हैं, उसको कहते हैं नित्य निगोद। तो उसको कहा ना भाव कलंक प्रचुर है, तो ये अनुभाग बंध भी इतना तीव्र बांध रहे, ऐसा भी हो सकता है। इन स्थानों के अंतर छह प्रकार की वृद्धि में अवस्थित है। इन स्थानों में जो अंतर है, अभी एक स्थान से दूसरा स्थान में जितना गैप है अनुभाग वाला, हाँ, तो ये जो स्थानों का जो अंतर है वो छह प्रकार की वृद्धि में अवस्थित है। यानी कोई एक अंतर, अभी कोई विशिष्ट अनुभाग बांधा है जीव ने। अनुभाग का स्थान किसको कहा हमने? एक समय में अनंत कर्म परमाणु बांधते हैं, अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग अनुभाग पड़ता है। मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग जिन परमाणुओं में पड़ा है, तो उस एक परमाणु में कितना अनुभाग है उसको हम स्थान कहेंगे। अभी उसी जीव ने अन्य समयों में या किसी अन्य जीव ने अलग अनुभाग बांधा है, इसमें डिफरेंस कितना हो सकता है मिनिमम पॉसिबल? हाँ नहीं, तो उसमें भी अलग अलग वेरिएशन है। हमने सूक्ष्म सांप्राय में एक एक समय में अनंत गुणा वाला डिफरेंस देखा था, गुणा वाला। तो कहते हैं इसमें भी छह प्रकार की वृद्धि, ये छह प्रकार का डिफरेंस पॉसिबल है। कोई दो स्थान ऐसे हैं देखो इसको पढ़ेंगे हम, आपको ये ख्याल, ये बात बताना चाहते हैं। पहली लाइन क्या पढ़े हमने, इन स्थानों के अंतर, अलग अलग स्थानों में जो डिफरेंस है, अंतर यानी उनमें डिफरेंस, किसी का अनुभाग कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का और ज्यादा है, तो ये जो अंतर है वो छह प्रकार की वृद्धि में अवस्थित है। यानी वो जो अंतर में जो वृद्धि है, हम मिनिमम से मैक्सिमम तक देखेंगे, कभी अनंत भाग वृद्धि होगी, कभी असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर होगा, कभी संख्यात भाग वृद्धि का होगा, इस तरह से कहीं ये अलग अलग वेरिएशन पॉसिबल है। हमेशा अनंत गुणित वेला नहीं लेना उसमें, ये बात बताना चाहते हैं। पढ़ेंगे पूरा ख्याल में आएगा। देखो यथा अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतर और स्पर्धकों के अंतर अनंत वे भाग से अधिक है। जिसको अनंत भाग वृद्धि कहते हैं उसका अर्थ क्या है, अब मान लेते हैं हमारी ओरिजिनल संख्या कोई है 1000 और उसके हमने 100 से भाग दिया, ये 100 को भी अनंत समझो, ये 1000 भी अनंत है और 100 भी अनंत है, दूसरा अनंत है, अनंत में भी वेरिएशन होती है। तो हमने 100 से भाग दिया तो कितनी संख्या आई, 10 आ गई। तो 10 इसमें मूल में मिला दो तो 1000 और 10 हो गए, तो वृद्धि कितनी हुई, 1000 से 10 बढ़े ना, तो हमको ये अनंतों की भाषा में तो अनंतवा भाग बढ़ गया, उसको कहते हैं अनंत भाग वृद्धि। ये आसान है ना, देखो अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतरों और स्पर्धकों की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, अभी जो हमने 100 से भाग दिया उसके बदले हम असंख्यात मान लेते 50 है, तो 50 से भाग देते, असंख्यात वे भाग से भाग देते हैं, तो यहाँ संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आएगी ना। तो 20 अगर बढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे उसको, छोटे भाग से भाग देते तो संख्या ज्यादा आएगी। हाँ, वैसे संख्यात से भाग देने पर जितनी वृद्धि आई उसमें मूल में मिला देते हैं तो उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। संख्यात गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन में, 1000 का 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, तो संख्यात में मल्टीप्लाई हुआ तो उसको हम कहेंगे संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा हो जाए तो असंख्यात गुणा वृद्धि, और अनंत गुणा होगा तो अनंत गुणा वृद्धि। तो यहाँ कहते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ेंगे शुरू से, अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतर, जहाँ अनंत भाग वृद्धि होती है उस स्थानों का जो अंतर है, और स्पर्धकों का अंतर, ये स्पर्धकों का भी अंतर वेरिएबल है, कल हमने देखा था ना, उसकी बहुत चर्चा की थी। हाँ, तो ये सिद्ध होता है अनंत वे भाग से अधिक है। अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतरों और स्पर्धकों की अपेक्षा, अंतरों की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि संबंधी स्थानों के अंतर, इसका अर्थ क्या है, हर दो स्थानों में उतनी ही वृद्धि का अंतर होगा, ऐसी बात नहीं, ये छहों में से कोई भी वृद्धि पॉसिबल है वहां पर, तो इन वृद्धियों का अंतर ये जो क्रम से बताए, और स्पर्धकों के अंतर अनंत गुणे हैं, असंख्यात भाग वृद्धि की अपेक्षा, सॉरी अनंत भाग वृद्धि की अपेक्षा अनंत भाग वृद्धि का जो स्थान आया उस अंतर से यह अंतर भी अनंत गुणा है, ऐसा कहने में आता है, और स्पर्धकों का अंतर भी। अब कहते हैं असंख्यात भाग वृद्धि के भीतर अनंत भाग वृद्धियों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर असंख्यात वे भाग अधिक है। यानी दो असंख्यात भाग वृद्धि के बीच में अनंत भाग वृद्धि होती है तो उसका जो अंतर है वो बता रहे हैं। संख्यात भाग वृद्धि के भीतर वो वृद्धि बराबर करना, फिर पढ़ती हूँ नीचे से तीसरी लाइन, संख्यात भाग वृद्धि के भीतर अनंत भाग वृद्धियों के स्थानांतर, स्थानांतर यानी स्थानों में अंतर, और स्पर्धकांतर संख्यात्व भाग अधिक है। ये जो पहले लाइन पे लिखा था, देखो अनंत भाग वृद्धि में क्या होता है, अनंत भाग अधिक है, असंख्यात भाग वृद्धि में क्या होता है, असंख्यात भाग अधिक है, जो हमने 20 अधिक है उसको असंख्यात भाग अधिक है कहा, अंतर नहीं, वो उसका उसका अपना अपना वो अंतर कितना है, असंख्यात भाग से अधिक है, इसके 50वें भाग से अधिक है, पहले हमने देखा था उसके 100वें भाग से अधिक है, एक दूसरे से कंपेयर मत करना, अभी अपना अपना उसका अर्थ समझा रहे। अनंत भाग वृद्धि का अर्थ क्या है, आगे वाला स्थान अनंत भाग से अधिक है, अनंतवे भाग से अधिक है, जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि होती है वहां क्या है, असंख्यातवे भाग से अधिक है, इतना ही अभी समझो। नीचे से तीसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ, संख्यात भाग वृद्धि के भीतर, यानी जहां संख्यात भाग वृद्धि है वहां क्या होता है, अनंत भाग वृद्धियों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर संख्यातवे भाग अधिक है, संख्यात गुण वृद्धि के भीतर अनंत भाग वृद्धियों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर संख्यात गुणे अधिक है, उसके भीतर अनंत भाग वृद्धि वाली बात बताएं, ये जरा थोड़ा अटपटा है। छह के छह नहीं हर बार रहेंगे, हाँ, तो जहां असंख्यात भाग वृद्धि होती है तो वो असंख्यात भाग वृद्धि हुई उसमें अनंत भाग वृद्धि के स्थान कितने चले गए, ऐसा कहना चाहते हैं, ये बात बताना चाहते हैं। अब ये गुणा वृद्धि में उन्होंने बताया संख्यात गुणे हैं, असंख्यात गुण वृद्धि के भीतर अनंत भाग वृद्धियों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर असंख्यात गुणे अधिक है, इसी प्रकार शेष स्थानों के भी अंतरों की प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए। ये जो षट्स्थान वाला जो प्रकरण है ना, वो तो आपको समझ में नहीं आवे क्योंकि वो तो कभी सुना ही नहीं ना, हमने सुना है फिर भी ये उससे भी और आगे वाली बात है। अभी शंकाकार क्या पूछता है देखेंगे। यहाँ शंकाकार कहता है कि सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक के जघन्य अनुभाग स्थान से नीचे के अनुभाग बंध स्थान केवल कभी भी किसी भी जीव में संभव नहीं है, इस कारण उनकी अनुभाग स्थान संज्ञा संगत नहीं है। क्या कहते हैं, हमने देखा था मिनिमम पॉसिबल अनुभाग किस, ये मैक्सिमम पॉसिबल, उसका भी जघन्य अनुभाग स्थान लिया, तो उसके नीचे कोई जीव संभव नहीं है, तो उसके नीचे के स्थानों का अनुभाग स्थान क्यों कहते हो, ये बात बता रहे। बंध के प्रति स्थान संज्ञा हो सकती है, ये शंका ही चल रही है, ऐसा कहने पर कहते हैं कि वैसा भी संभव नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप से न पाए जाने वाले समान धन वालों और एक पंक्ति रूप से स्थित परमाणु पुद्गलों में अंतर्भाव को प्राप्त हुए तथा सत्व अनुभाग स्थान के प्रमाण को न प्राप्त करने वाले के अनुभाग स्थान होने का विरोध है। इस कारण सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक के जघन्य अनुभाग सत्व स्थान से नीचे के अनुभाग स्थानों की प्ररूपणा अनर्थक है। ये जो आपने ये सारे इतने अनुभाग स्थानों की बात यहाँ बताई है, तो जो जघन्य में जघन्य जो स्थान है, स्थान किसको कहते हैं, सूक्ष्म निगोद जीव जितना अनुभाग बंधेगा उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल जितने परमाणु में है उसको उसको स्थान कह दिया, परंतु उसने इतने सारे परमाणुओं का बंद किया ना, जो उससे अनुभाग कम होता, हम देखे पहली वर्गना दूसरी वर्गना उसमें अनुभाग बहुत था, यानी बढ़ते हुए नीचे से बढ़ते हुए उत्कृष्ट तक, और कहाँ तक बताया उन्होंने, उत्कृष्ट तक, तो उसके नीचे के स्थानों की प्ररूपणा क्यों करते हो, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। प्रश्न ये है, समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी जघन्य अनुभाग स्थान के स्वरूप की प्ररूपणा करने के लिए उक्त अनुभाग स्थानों की प्ररूपणा की गई है, कारण कि उनकी प्ररूपणा के बिना जघन्य अनुभाग स्थान का प्रमाण, स्पर्धकों का प्रमाण, उनकी वर्गणाओं का प्रमाण और अंतर का प्रमाण नहीं जाना जाता। अब हम मिनिमम पॉसिबल देखेंगे तो फिर उसके इतने परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहेंगे, फिर एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, फिर इतनी अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक हुआ, ऐसे अनंत स्पर्धकों का हुआ, तो मैक्सिमम पॉसिबल तभी बता सकते हैं, उसमें ये सारा उसमें अंतर्भूत है। अतएव उक्त नीचे के बंद स्थानों की प्ररूपणा सफल है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार शेष असंख्यात लोकमात्र षटस्थानों की भी अंतर प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार अंतर प्ररूपणा समाप्त हुई। हमने अलग अलग प्ररूपणाएं देखी थी ना, हाँ कहाँ देखी थी याद है? हाँ 88। चलो आपके पास सब तैयार है। हाँ देखो देखो 88 वाला सूत्र है ना, वहां पर जरा देखना। उसमें 88 प्ररूपणा ने वो अलग अलग प्रकार से वर्णन। तो यहाँ जो अनुभाग संबंधी बात चलेगी उसमें कौन कौन सी बात है होगी, तो पहले में पहले अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा वो हमने देखी, स्थान प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा, ये तीन प्ररूपणा अपनी हो चुके। अब कांडक प्ररूपणा यहाँ से शुरू करेंगे। ये कांडक क्या होता है उसको बताएंगे हम। पहले प्राकृत में सूत्र पढ़ेंगे ऊपर, कंडय परुवणदाये अति अनंत भाग परिवड्डी कंडयम, असंखेज्य भाग परिवड्डी कंडयम, संखेज्य भाग परिवड्डी कंडयम, संखेज्य गुण परिवड्डी कंडयम, असंखेज्य गुण परिवड्डी कंडयम, अनंत गुण परिवड्डी कंडयम। ये अलग अलग कांडक है। कांडक यानी विशिष्ट टुकड़ा, हम कहेंगे ना टुकड़ा, पर्व जिसको कहते हैं। जैसे हम वो गन्ना लाते हैं ना, तो उसमें तो एक एक पैर कहते, पैर कहो या पर्व कहो, तो उसको कांडक भी कहेंगे। ये अपनी उंगली है, उंगली में भी तीन ऐसे अलग अलग दिखते, तो इसको हम कांडक कहेंगे। तो यहाँ भी विशिष्ट प्रमाण को कांडक कहने में आता है। अभी वो गन्ने की बात बताई ना अभी, हाँ हिंदी में पढ़ते देखो। कांडक प्ररूपणा में अनंत भाग वृद्धि कांडक, यानी अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, लगातार जितने बार होती उतनी बार उस सबको मिलकर हम कहेंगे एक कांडक हुआ। असंख्यात भाग वृद्धि कांडक, संख्यात भाग वृद्धि कांडक, संख्यात गुण वृद्धि कांडक, असंख्यात गुण वृद्धि कांडक और अनंत गुण वृद्धि कांडक होते हैं। ये पहले होते हैं बताएंगे, फिर उसका प्रमाण बताएंगे, उसका स्वरूप बताएंगे। सूक्ष्म निगोध जीव के जघन्य सत्व स्थान से लेकर, अभी सत्व स्थान कहा, पहले हमने हम पृष्ठ संख्या 128 पर आ गए वापस, 128। क्या कहते हैं, बंद स्थान और सत्व स्थान, ऐसे दो बातें होती हैं। बंद की बात हमने देखी थी, पर जो बंधा हुआ है वो सत्ता में पड़ा रहता है, तो वो सूक्ष्म निगोध जीव के सत्ता में जो मिनिमम पॉसिबल पड़ा है उसको यहाँ कहा जघन्य सत्व स्थान। तो सूक्ष्म निगोध जीव के जघन्य सत्व स्थान से लेकर ऊपर के स्थानों में कांडक प्ररूपणा की जाती है, क्योंकि हमें हम कहाँ से ले रहे हैं अभी, सूक्ष्म निगोध से लेकर, और फिर वो वहाँ वृद्धि का वगैरह प्रमाण बताएंगे। क्योंकि अक्षपक का इससे अल्प और कोई अनुभाग सत्व स्थान नहीं है, यानी सूक्ष्म निगोदों में भी वो सत्व का जो स्थान है वो अल्प है, और उससे नीचे वाला सत्व किस में पाया जाता है, क्षपकों में। जैसे हमने पहले देखा था एक इंद्रियों में सत्ता में पड़ी स्थिति, उसके भी कांडक द्वारा उसको स्थिति कम होती है, और उससे कम स्थिति वाला सत्व तो क्षपकों में पाया जाता है, क्षपक श्रेणी में, वैसे यहाँ पर भी है, जघन्य सत्व की बात है। शंका, अक्षपक यानी जो क्षपक नहीं है, जो क्षपक नहीं है, अभी सातवें गुण स्थान तक के सब समझना। मिनिमम सत्व जो है जघन्य सत्व, फिर अधिक 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 की बात करेंगे बाद में। ये बंद की बात पहले हमने वो अनंत गुणित क्रम से देखी थी, अभी सत्व में उसकी बात चल रही है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, संयम के अभिमुख हुए, अभिमुख यानी सन्मुख हुए, संयम को अभिमुख यानी अभी जो संयम को प्राप्त करने वाले, संयम माने मिथ्या दृष्टि जो अभी सातवें गुणस्थान में जाने वाला है सम्यक्त्व के साथ, तो संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के, यानी जो करण लब्धि मानता है उसमें अंतिम समय है उसका, पहले से सातवें में जाने वाला। ज्ञानावरणीय का जघन्य अनुभाग बंध स्तोक है, ये क्यों जाना, कैसे जाना, उसको बात पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं। उससे सर्व विशुद्ध असंगी पंचेंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। ये जो अभी हमने पढ़ा था उसी को यहाँ समाधान के रूप में बता रहे हैं। हमने तो उसके डिटेल्स भी देखे थे, परंतु उसमें एक एक को ले ले रहे हैं। उससे सर्व विशुद्ध चतुरिंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। इस प्रकार तीन्द्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध उससे अनंत गुणा है। उससे द्विंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। उससे सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। हाँ, सर्व के वो के ऊपर रफा रहा है ना, मुझे लगा मेरे पेंसिल से कुछ हुआ। हाँ, मैंने कर दिया था, सर्व विशुद्ध करना, सव हुआ। अब नीचे से सात छठी लाइन, उससे सर्व विशुद्ध सूक्ष्म एकेंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। फिर कहते हैं हत समुत्पत्ति करके, समुत्पत्ति का चाहिए ना वहाँ, पत्तियम समुत्पत्तिक चाहिए, क चाहिए बीच में। अब ये जो सूक्ष्म एकेंद्रिय का वो बंद बताया, फिर हत समुत्पत्ति करके स्थित हुए उसके ही ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। अभी तक तो हमने बंद की बात की थी, यहाँ सत्व की बात हो रही है। उससे बादर एकेंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। अभी सत्व की बात हो रही है ना, सत्व में उल्टा जा रहे हैं फिर। हाँ, सत्ता में जो है उसका अनुभाग घटा रहे हो, तो जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा कर रहे हो। उससे द्विंद्रिय के ज्ञानावरण जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है, सत्ता में पड़ा हुआ देख रहे हैं। उससे तीन्द्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। उससे चतुरिंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। उससे असंगी पंचेंद्रिय के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। और उससे संयम के अभिमुख हुए संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग सत्व अनंत गुणा है। इस अनुभाग अल्प बहुत्व से वह जाना जाता है। अभी तो हमारा अनुभाग अल्प बहुत्व आना है, वो उसके पहले इसके उत्तर के लिए दे दिया उसने। ये सत्ता की बात उन्होंने अभी आगे आने वाली थी को हमने देखा ना, ये प्ररूपणाएं जो बता रहे हैं। अल्प बहुत वो लास्ट में आने वाली है। ये हता हता समुत्पत्ति की वाली बात आने वाली है कहीं पर आगे, पहले हमने पढ़ा था ना उसको। क्योंकि ये बाद में आने वाली बात है। ये आगे आने वाली बात है। सत्व स्थान कहाँ होते हैं और हत समुत्पत्ति स्थानों का विचार 221 226 वगैरह पर आने वाली बात है। ये आगे आने वाली बात है। वहां लिखा है हत समुत्पत्ति कर्म वाले ऐसा कहने पर पूर्व के समस्त अनुभाग सत्व का घात करके और उसे अनंत गुणा हीन करके स्थित हुए जीव के द्वारा ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए। वो हत हत की भी बात आने वाली, वो आगे और 100 पेजेस के बाद आने वाली वो बात। अभी हम आते हैं अपने पृष्ठ पर, हाँ 129 पर। ये सत्ता में जो कुछ बातें होती है ना, अनुभाग के हानि वगैरह, वो बात आगे विषय आने वाला है, क्योंकि चूलिकाएं चलेगी अभी आगे भी। तो ये अल्प बहुत उन्होंने बता दिया। अब आगे, इनमें से एक एक का गुणकार असंख्यात लोक मात्र सब जीव राशियां, असंख्यात लोक मात्र असंख्यात लोक, असंख्यात लोक मात्र उत्कृष्ट संख्यात और असंख्यात लोक मात्र अन्योन्य अभ्यस्त राशियां, इन गुणकार स्वरूप से स्थित राशियों का संवर्ग है। ये बीच बीच में अनंत गुणा वगैरह लिखा है ना, तो ये इतने इसमें गुणकार पॉसिबल है। देखो क्या कहते हैं, जब अनंत गुणा कहेंगे या असंख्यात गुणा कहेंगे तो असंख्यात लोक मात्र सब जीव राशि, एक जीव राशि अनंत है, ऐसे उसको असंख्यात लोक गुणा करना। वैसे असंख्यात लोक मात्र असंख्यात लोक, असंख्यात लोक को असंख्यात लोक से गुणा करना, असंख्यात लोक मात्र उत्कृष्ट संख्यात यानी उत्कृष्ट संख्यात को असंख्यात लोक गुणा करना, और असंख्यात लोक मात्र अन्योन्य अभ्यस्त राशियां हैं। संवर्ग किसको कहते, याद करना है वो। वर्गित संवर्गित देखना है, संवर्ग है ना आपस में, फिर दोबारा गुणा कर। वो आपस में गुणा करते रहना, उसको संवर्ग कहते हैं। कोई राशि रेस्ट उतनी ही राशि कर दो, वो संवर्ग हो गया उसका। जैसे हम जघन्य एक गणित के इतने कभी कभी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए सब हंस रहे हैं। देखा ये अग्नि, ये हमने संख्या मान देखे थे ना, याद है आपको, संख्या मान देखा था और संख्या के भेद देखे थे असंख्यात वगैरह, तो उसमें तेजस का एक जीव सबसे मिनिमम पॉसिबल, उनमें ये वर्गित संवर्गित लिया था बात। वो चलाकात्र निष्ठापन करना वगैरह वगैरह, हाँ 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 3.5 चलाका। कौन से, हाँ ये असंख्यात लोग, उसके तो हमने संदृष्टि में तो उसके साइंस थे ना, साइन लैंग्वेज, साइन को देखना है। जीव राशि कैसे लिखते हैं मालूम है, 16, हाँ ये 16 कहेंगे तो जीव राशि के लिए ये चिन्ह है बस, वो 16 से कुछ मतलब नहीं है। हाँ अब ये असंख्यात लोक, लोक के लिए कौन सी साइन है, आड़ी तीन लाइन लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है एक लोक। नहीं नहीं अभी उसकी बात नहीं, मैं खाली सामान्य एक आड़ी लाइन होती है उसका अर्थ होता है सात राजू यानी जगत श्रेणी। दो आड़ी लाइन का अर्थ होता है सात राजू गुना सात राजू जिसको हम प्रतर कहते हैं जगत प्रतर 49 स्क्वायर राजू। और तीन आड़ी लाइन का अर्थ होता है सात राजू गुना सात राजू गुना सात राजू पूरे लोकाकाश में इतने प्रदेश है ना तो 343 घन राजू ये साइन है उसके। उसको असंख्यात गुणा करना है तो ये ऐसी साइन लिए ये असंख्यात की साइन है। हम पढ़ेंगे असंख्यात लोक यानी लोक मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। हाँ तो अभी असंख्यात लोक मात्र जीव राशियाँ, इसके आगे हम असंख्यात लोक और 16 लिखेंगे तो असंख्यात लोक और 16 ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ। हाँ इतना ही बड़ा है और इसको सबको एक समय में जानने वाले केवल ज्ञानी है। हम तो इतने कितने सालों से इसको पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ कुछ थोड़ा अंदाजा कर सकते हैं, अंदाजा ही, वो तो अपने ज्ञान का डायरेक्ट विषय है ही नहीं। तो केवल ज्ञानी इन सब बातों का एट अ टाइम सभी जीवों के इतने परिणाम जानेंगे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के और सभी के एक एक समय के परिणाम जानते हैं तभी तो कहेंगे ना उन जीवों से ये जीव इतने गुना है ये है वो सब कहेंगे। तो ये तो ज्ञान की महत्ता है ना। हाँ ये असंख्यात हो गए असंख्यात लोग असंख्यात लोग ये दो बार असंख्यात लोग लिखेंगे। ये असंख्यात लोग के आगे एक दंड देना या फिर असंख्यात लोग लिखना इसका अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन। इसको कहेंगे असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग। ऐसे कोड लैंग्वेज में सारे गणित है बिन पंडित टोरल मजी ने पूरे ऐसे पुस्तक लिखे उसके ऊपर। असंख्यात लोग मात्र उत्कृष्ट संख्यात। अभी उत्कृष्ट संख्यात के लिए कोई भी संदृष्टि ले सकते हैं उसमें। पहले तो हमने अलग अलग लिए थे चार यहाँ नहीं ले सकते हैं। उत्कृष्ट संख्यात बताने के लिए हमने कुछ मिनिमम असंख्यात को 16 कहा था और उत्कृष्ट अभी हमने जो इसमें लिया था वो 4-5 और उसमें जो लिया था वो 6 लिया था। 6 नहीं होगा 5 होगा। असंख्यात व भाग के लिए हमने 4 किया था ना असंख्यात गुणा वगैरह करते संख्यात गुणा करने के लिए 6, 7 और 8 छः करते संख्यात गुणा के लिए और संख्यात विभाग के लिए हमने 5 किया था। उसके लिए यहाँ की संदृष्टि नहीं चलेगी अपने को। और अन्य अभ्यस्त राशियां तो जितने अभी आगे हम जाते हैं उतनी बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करो। अब शंका चलेगी क्षीण कषाय के अंतिम समय में ज्ञानावरणीय का जघन्य अनुभाग सत्व होता है। देखो क्या कहते हैं ज्ञानावरणीय का अभी जो बंद करता है बंद कहाँ तक है सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंद है। अब क्षीण कषाय ने 12वें गुणस्थान में जीव आता है तो पोजीशन क्या है अभी बंद नहीं हो रहा है और विशुद्धि इतनी बढ़ रही है वहां पर बढ़ गई है ना पूर्ण वितराग हो गया है अभी वो तो समान है विशुद्धि फिर भी उसका सत्व हर समय कम हो रहा है अंतिम समय है अभी उसका नाश होने वाला है पूर्ण तो वहाँ सत्व है वो मिनिमम पॉसिबल सत्व है उसका अनुभाग। वह स्वामित्व सूत्र में कहा जा चुका है उससे लेकर कांडक प्ररूपना क्यों नहीं की जाती ये तो अनंत भाग वृद्धि वगैरह के जो कांडक कहे तो उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया ऐसा कहते वहां से क्यों नहीं शुरू किया। समाधान नहीं क्योंकि उससे लेकर क्रम से 6 वृद्धियों का अभाव है। हमने क्या देखा था सूक्ष्म सांप्राय की बात करेंगे या क्षीण कषाय की बात करेंगे सत्व की अपेक्षा तो अनंत गुणा का डिफरेंस है वहां पर तो वहां क्रम से 6 वृद्धियां नहीं होती है। और क्रम से निरंतर वृद्धि से रहित स्थानों में कांडक प्ररूपणा करना शक्य नहीं है। ये जो कांडक प्ररूपणा कहते हैं, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, कितनी असंख्यात बार हो जाएगी तब हम कहेंगे एक कांडक हुआ। एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, असंख्यात भाग वृद्धि होती है, उसको कांडक नहीं कहते। अपनी यहाँ स्थानों के बीच की बात नहीं चल रही, कांडकों की बात चल रही है। तो कांडक कहाँ हो गए? निरंतर उतनी वृद्धि होगी कितने ही बार, तब उसको कहेंगे एक कांडक हुआ। ये जहां जहां षट स्थान होते हैं वहीं पर ये कांडक हो गए। क्रम से वृद्धि की बात चल रही है ना वहां पर। यानी क्रम से निरंतर वृद्धि होगी तो ही कांडक होगा वहां, क्योंकि उसमें विरोध है, शंका। फिर अविभाग प्रतिच्छेद स्थानों की अंतर प्ररूपणाएं जघन्य बंध स्थान से लेकर क्यों कही गई है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उससे लेकर उनकी प्ररूपणा के करने में भी कोई दोष नहीं है, अथवा उनमें भी सूक्ष्म एकेंद्री के जघन्य अनुभाग सत्व स्थान से लेकर ऊपर के स्थानों की प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि अधस्तन बंध स्थान सत्ता रूप से उपलब्ध नहीं है। उसके नीचे वाले का जो बंध होता है वो सत्ता रूप से नहीं पाया जाता है, ऐसे कुछ कहने में। यह सूक्ष्म निगोध का जघन्य अनुभाग सत्व स्थान बंध स्थान के सदृश है, यानी उसका बंध भी इतना है, सत्व भी इतना है, मिनिमम पॉसिबल, उसके नीचे वाला बंध नहीं पाया जाता, ये बात बताना चाहते हैं। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह इसके आगे एक प्रक्षेप अधिक करके बंद होने पर अनुभाग की जघन्य वृद्धि तथा उसी का अंतर मुहूर्त में कांडक घात के द्वारा घात कर डालने पर जघन्य हानि होती है, इस कषाय प्रावृत्त की प्ररूपणा से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ये मिनिमम पॉसिबल है, उसमें एक प्रक्षेप यानी एक विशिष्ट संख्या उसमें ऐड करना, अधिक करके बंद होने पर क्या कहेंगे? अनुभाग की जघन्य वृद्धि होती है। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद नहीं बढ़ते ना, अभी दूसरा बंद स्थान देखना है हमको, तो अनुभाग की जो जघन्य वृद्धि हुई उसमें हमने एक प्रक्षेप डाला, उसको कहेंगे प्रक्षेप, और उसी का अंतर मुहूर्त में कांडक घात के द्वारा घात कर डालने पर जघन्य हानि होती है। अब दूसरी लाइन, हाँ, पर एक 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 बार हानि हुई ना, अभी एक बार की हानि की बात चल रही है। इसको जघन्य बंधस्थान है ऐसा कहाँ से जाना? अभी कांडक की बात नहीं, यहाँ जो समाधान कर रहे हैं वो कांडक का समाधान नहीं है, इसको प्रूफ चाहिए ना कहाँ से जाना। ऊपर क्या लिखा था? सूक्ष्म निगोद का जघन्य अनुभाग सत्व स्थान जघन्य बंधस्थान, ये बंधस्थान के सदृश है, ये बात बताए, तो ये कहाँ से जाना? उसके लिए प्रूफ दिया उन्होंने। हाँ, एक बार हानि हुई तो उसको कांडक नहीं कहेंगे, लगातार उतनी 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 हानि हो जाएगी, हानि या वृद्धि, हम बीच में से शुरू करेंगे तो हानि कहेंगे, तो उसको कांडक कहेंगे। लगातार उतनी बार होगा, जब मान लेते 100 बार हुआ, इतनी 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 वृद्धि होते होते, तो हम कहेंगे एक कांडक बार हुआ, उसी को कांडक कहते। वही 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 वृद्धि, उतनी उतनी उतनी, जैसे अनंत वा भाग, अनंत वा भाग, अनंत वा भाग, अनंत वा भाग, तो हम कहेंगे ये एक कांडक बार हुआ। दूसरी भाषा में अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक हुआ, ऐसा कहेंगे। देखो, सूक्ष्म निगोद के जघन्य अनुभाग स्थान के बंध के सदृश न होने पर, यानी वहाँ सूक्ष्म निगोद का जो अनुभाग स्थान है वो यदि बंध के सदृश नहीं होने पर यह जघन्य वृद्धि और हानि नहीं पाई जा सकती है। उसका जो प्रश्न था ना, ये प्रूफ क्या है, उसके लिए बता रहे हैं। कारण कि बंध के बिना वृद्धि की संभावना नहीं है। क्या कहते हैं? वहाँ जघन्य अनुभाग सत्व है और उसकी वृद्धि होती है, तो सत्ता में कैसी वृद्धि होगी? जैसे हम स्थिति में भी उत्कर्षण अपकर्षण का स्वरूप देखा था, तो जो कोई विशिष्ट स्थिति में पड़ा है कर्म, और अभी नया बंध होगा ज्यादा स्थिति वाला, तो उसकी स्थिति बढ़ती है, उत्कर्षण होता है ना, वैसे यहाँ कहते हैं अनुभाग सत्व जो है अंदर पड़ा है जो, उसमें बढ़ोतरी कैसी हुई, तो नया बंध है उसमें ज्यादा अनुभाग था तो उसके भी सत्व का भी अनुभाग बढ़ गया। हम कोई परिणाम करते हैं तो जो बंध होता है तो वो पहले वाले कर्मों में भी उसमें वेरिएशन हो जाती है। तो ये सत्ता में पड़े हुए में अनुभाग बंध, अनुभाग सत्व में जो अनुभाग है वो बढ़ता है। यहाँ लिखा ना, बंध के बिना वृद्धि की संभावना नहीं होती। शंका, घात स्थान के ऊपर एक प्रक्षेप की वृद्धि क्यों नहीं होती? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि घात सत्व स्थान बंध के सदृश अष्टांक और उर्वंक के मध्य में, ये अष्टांक किसको कहा था याद है? अनंत गुणा वृद्धि को अष्टांक यानी आठ अंक से डिनोट करते हैं, चिन्ह है उसका। और उर्वांक यानी ऊ लिखेंगे तो क्या समझना? अनंत भाग वृद्धि। तो अष्टांक और उर्वांक के मध्य में नीचे के उर्वंक से अनंत गुणा और ऊपर के अष्टांक से अनंत गुणा हीन होकर स्थित है। इसके ऊपर यद्यपि अतिशय जघन्य स्वरूप से बढ़कर बांधता है तो भी ऊपर के अष्टांक समान बंध होना चाहिए। इस कारण यहाँ अनंत गुण वृद्धि पाई जाती है न कि अनंत भाग वृद्धि। ये घात स्थान के ऊपर की बात चली। घात यानी उसने सत्व स्थान का घात कर दिया था तो उसके ऊपर एकदम ज्यादा अनंत भाग वृद्धि क्यों नहीं होती? तो कहते वहां का बंधक की अपेक्षा देखेंगे तो बंधक के कारण वो सत्व बढ़ गया, पहले घात हुआ था तो अभी बंध हुआ तो बढ़ गया, तो कितना बढ़ेगा? तो कहेंगे अनंत गुना बढ़ेगा। फिर कहते यहाँ जघन्य हानि क्यों नहीं ग्रहण की जाती? ये अनंत भाग वृद्धि वाली ऐसा वृद्धि की बात बताई, वृद्धि तो अनंत गुणी हो गई। अब कहते हानि जो है वो जघन्य हानि क्यों नहीं ग्रहण करना? तो कहते हैं क्योंकि जघन्य बंध स्थान के संख्यात स्थान आगे हटकर स्थित सत्व स्थान की अनंत गुण हानि को छोड़कर अनंत भाग हानि का अभाव है। क्या कहते हैं? सत्व स्थान कितना है? तो कहते जो जघन्य बंध स्थान है हाँ उससे संख्यात स्थान आगे है। जघन्य बंध स्थान के आगे कितने ही स्थान चले जाएंगे उतना सत्व है अभी। अब उस सत्व की हानि होकर बंध जितनी होगी तो कितनी हानि हुई कहेंगे? अनंत गुणा हानि कहेंगे, अनंत भाग हानि नहीं होगी। ये बात बताना चाहते हैं। इसी कारण यह सूक्ष्म निरोध का जघन्य स्थान सत्व स्थान नहीं है किंतु बंध स्थान ही है, यह सिद्ध है। बंध स्थान होकर भी वह अनंत गुण वृद्धि में ही स्थित है ऐसा जानना चाहिए। फिर शंका, यह अष्टांक ही है यह किस प्रमाण से जाना जाता है? यानी वो अनंत गुणा वाला जो है ऐसा क्यों जान सकते हैं? समाधान, एक षट स्थान का आश्रय करके स्थित आगे की अधस्तन स्थान प्ररूपणा, अधस्तन यानी नीचे वाली, अधस्तन का स्थान यानी नीचे वाला स्थान, उसकी प्ररूपणा अलग बताएंगे। तो अधस्तन स्थान प्ररूपणा में जघन्य स्थान से ये आने वाली है। अभी हम कांडक प्ररूपणा देख रहे हैं, आगे अधस्तन स्थान प्ररूपणा आने वाली है। उसमें जघन्य स्थान से अनंत वे भाग से अधिक स्थानों का कांडक जाकर असंख्यात वे भाग से अधिक स्थान होता है, यानी असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान होता है। क्या कहते हैं उसमें? क्या बताया है? एक कांडक जाने पर वो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। पहले हमने देखा ना अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक चला जाएगा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी, वही बात यहाँ बतानी चाहते हैं। क्या कहते हैं? फिर पढ़ती हूँ, षट्स्थान का आश्रय करके स्थित आगे की अधस्तन स्थान प्ररूपणा में जघन्य स्थान से अनंतवे भाग से अधिक स्थानों का कांडक जाकर असंख्यातवे भाग से अधिक स्थान होता है। फिर दोबारा देखो, अनंतवा भाग अधिक अनंतवा भाग अधिक अनंत भाग अधिक, ऐसे स्थान कितने जाएंगे? एक कांडक प्रमाण, तब जाके असंख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान आएगा। ये बात यहां हमने पढ़ी, वही भाषा ऐसी है ना, उल्टी पुल्टी। फिर देखो दूसरी लाइन में, जघन्य स्थान से अभी आगे जाना है ना, कितना जाना? अनंतवे भाग से अधिक स्थानों का कांडक जाकर, यानी एक कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर, जो पढ़ा उसका अर्थ। फिर क्या होता है? असंख्यातवे भाग से अधिक स्थान होता है, यानी असंख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान होता है। यह हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है इसको, परंतु ये भाषा ख्याल में नहीं आती है। यह जो प्ररूपणा की गई है उससे जाना जाता है कि जघन्य स्थान उर्वंक नहीं होता, क्योंकि उर्वंक के होने पर समस्त कांडक प्रमाण गमन घटित नहीं होता है। उर्वंक ने अनंत भाग वृद्धि, वह चतुरंक भी संभव नहीं है। चार अंक किसको कहते हैं? असंख्यात भाग वृद्धि को, क्योंकि कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियां जाकर प्रथम संख्यात भाग वृद्धि है, ऐसा वहां कहा गया है। वह पंचांक भी नहीं हो सकता। पंचांक किसको कहा? संख्यात भाग वृद्धि को पंचांक पांच कहते हैं, क्योंकि संख्यात वे भाग से अधिक स्थानों का कांडक जाकर संख्यात गुण वृद्धि होती है, ऐसा बतलाया है। अब कहते हैं वह षष्टांक भी संभव नहीं है। छः किसको कहते हैं? संख्यात गुण वृद्धि को छः कहते हैं, क्योंकि कांडक मात्र संख्यात गुण वृद्धियां जाकर असंख्यात गुण वृद्धि होती है। ख्या के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, ऐसा वचन है। अब कहते हैं सप्तांक भी नहीं हो सकता। सात किसको कहना? असंख्यात गुण वृद्धि को, क्योंकि कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धियां जाकर अनंत गुण वृद्धि होती है, ऐसा वचन है। अतएव अतः क्या बच गया? अष्टांक। परिशेष स्वरूप से, परिशेष ने अभी जो बच गया वो परिशेष जो बाकी रह गया स्वरूप से, वह जघन्य स्थान अष्टांक ही है, यह सिद्ध होता है। इतना सारा जाने पर वो पूछते अष्टांक किसे कहते हैं? देखो ये हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका, मुझे तो बार बार याद आता है, हमने उसको इतनी बार पढ़ा है, तीन तीन चार चार बार। उसको अगर नहीं पढ़ते इसको पढ़ने के पहले, तो वो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। वहां लगता था वो बहुत डिफिकल्ट है, परंतु वहां तो पद्धति से समझाया है, यानी शुरू से लेकर समझाया, जैसे कोई सामने वाला समझता ही नहीं ऐसा जानकर क्रम से समझाया है कोई भी बात। और यहाँ तो क्या है, वो ऊपर ऊपर की चर्चा है, यानी हाई लेवल की चर्चा है, तो ये पहली बातें नहीं समझते तो ये कुछ नहीं समझ में आता। अब ये पूछते हैं ना अष्टांक किसे कहते हैं, पांच मिनट है और। अधस्तन उर्वंक को सब जीव राशि से गुणित करने पर जो प्राप्त हो, उतने मात्र जो अधस्तन उर्वंक से अधिक स्थान है उसे अष्टांक कहते हैं। ये अनंत गुणा वाला स्थान है ना, वो अनंत गुणा में अनंत किसको कहना? तो ये जीव राशि वाला अनंत है, उतने गुणित करना, ये बात है। जब हम उर्वंक कहते हैं तो अनंतवा भाग से वृद्धि होती है, और जब अष्टांक कहते हैं अनंत गुणा वृद्धि होती है। अनंत गुणा का प्रमाण क्या है? तो जीव राशि का अनंत लेना। अधस्तन उर्वंक को एक अधिक सब जीव राशि से गुणित करने पर अष्टांक उत्पन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। अधस्तन उर्वंक यानी नीचे जो उर्वंक है उसके पहले वाला उर्वंक, फिर पहले वाला उरोंग का अर्थ क्या होता है? देखो हमने पूरा टेबल देखा था, तो ये ऊ चार ऊ पांच वगैरह सब लेते 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 एकदम अंत में, एकदम अंत में आए। तो जब आठ आता है उसके पहले भी ऊ अंक आता है, ऊ होकर आठ आता है, तो उस अदस्सन उर्वंग से आगे वाला जो आठ है हाँ वो कितना है ज्यादा है उसकी बात है यहाँ पर। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक स्थान, उसका भी समझना काउंट करना उसको। अदस्सन स्थान के अंतर से अष्टांक स्थान का अंतर अनंत गुना है। वह इस प्रकार से अनंतर अधस्तन उर्वंक में, अनंतर है ना इमीडिएट, अभी अनंतर अधस्तन कहा इमीडिएट पूर्व उर्वंक, हमने देखा ना ये अनंत भाग वृद्धि तो क्रम से होती 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 चली जा रही है। जैसे हमको समझाना है हम एक 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 रुपए से वृद्धि कहेंगे, एक 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 दस बार हुआ तो दस हो गए तो हम उसको एक दशक कहेंगे, फिर और आगे भी एक एक से ही बढ़ता है, 11, 12, 13 एक एक से बढ़ा है, फिर और एक बार 10 बढ़ेंगे फिर 20 हो जाएंगे, और फिर एक एक से बढ़ते हुए 10 बढ़ेंगे फिर 30 हुए, एक एक से बढ़ते हुए 40 हुए, ऐसे एक एक से ही बढ़ते हैं ना, तो ऐसे 9 बार और 10 बार दशक हुए, 10 10 भी 10 बार हुए, उसका भी कांडक हुआ तब 100 हो गए, परंतु 100 होने के पहले एक एक रुपये से ही बढ़ा था ना वो, अभी 100 के बाद भी एक एक रुपए से बढ़ता है, यानी वो फिर वो 10-10 से बढ़ते, 100 के 200 हो जाएंगे फिर 300, तो ये 100 वाला एक जो हम उसको संख्यात भाग करेंगे जो कुछ है, तो वो 100 भी एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, 10 बार 100 आएगा तो 1000 हो जाएगा, परंतु 1000 के आगे भी एक एक रुपए से ही बढ़ता है। अभी लाख भी हुए समझो, तो लाख भी हुए तो क्या एक एक से बढ़ा था ना, ये तो उदाहरण है, उदाहरण स्थूल है, उदाहरण में तो हम कंटिन्यूअस एक एक बढ़ा रहे, और जो ओरिजिनल है उसमें क्या होता है जितनी संख्या आएगी उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग बढ़ता है, उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। तो ये इस प्रकार से जो है ये हम कल ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ये बड़ा है पैराग्राफ, अभी होगा नहीं, हाँ हेवी डोज है, हाँ कल नाश्ता ज्यादा करके आना तो नींद जा जाएगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देता हो। प्रेरणा में